الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتلو عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين، إلى الآخر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا زدنا علما. तो इस क्लास में हम सूरह मायदा की तफसीर पढ़ते हैं, मार्कुल कुरान की जिल्द नंबर 3 में से, और आयात नंबर 27 से लेकर के 32 तक, क्योंकि हम मारूफ मसाइल पिछली क्लासेस में पढ़ना शुरू कर चुके हैं। तो इनमें हम जहां तक पहुंचे थे वो ये था कि यानी ये उनवान के तारीखी रवायात की नकल में एहतियात और सच्चाई वाजिब है। वतलु अलैहिम नबअ इब्ने आदम बिल हक। तो यहाँ से हम आगे बढ़े थे, और फिर हजरत मुफ्ती मोहम्मद शफी रहमतुल्लाह अलैह ने उस जमाने में जो अल्लाह ताला का कानून था, जो कानून अल्लाह के हुक्मों की बुनियाद पर अल्लाह का कानून बनता है, तो वो ये था कि आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा के जो है वो दो दो बच्चे पैदा होते थे, एक लड़का होता था एक लड़की होती थी। तो ये दोनों तो आपस में भाई बहन कहलाते थे, और फिर उसके बाद जब दोबारा से औलाद होती थी तो वो भी ट्विंस ही होते थे, और वो भी आपस में भाई बहन कहलाते थे, यानी करार दिए जाते थे अल्लाह के हुक्म के मुताबिक, यानी कि मुआशरे में नॉर्म में कहलाए जाते थे, बल्कि अल्लाह के हुक्म के मुताबिक वो भाई बहन होते थे। तो फिर इनकी दोनों जोड़ों के दरमियान आपस में शादी होती थी, जैसे आजकल कहते हैं ना गुलटे की शादी, गुलटा का की शादी, कि एक भाई होता है एक बहन होती है, दूसरा भाई बहन होती है, तो इसके बहन की शादी जो है वो भाई से होती है, उसकी भाई इसकी बहन की शादी उसके उस भाई से होती है। तो गोया के गुलटे की शादियां हो रही होती थी। तो अल्लाह ताला का हुक्म, और इसके ऊपर काफी तफसील से पिछली दफा बात हुई थी कि असल चीज तो अल्लाह का हुक्म ही है, वट्टा सट्टा भी कहते हैं उसको, कहीं पे वट्टा सट्टा भी कहते हैं। तो फिर अल्लाह का हुक्म जो होता है ना, वो सिर्फ ऐसा नहीं होता कि वो जिसकी कोई जिसके ऊपर तामील मुश्किल हो या नामुमकिन हो, नामुमकिन हो तो दूर की बात, इवन अल्लाह के हुक्म की तामील जो है वो मुश्किल भी नहीं होती, इसलिए कि अल्लाह जब हुक्म देते हैं तो वो ला युकल्लिफुल्लाहु नफसन इल्ला वसाहा के उसूल के मुताबिक हुक्म देते हैं। ये भी अल्लाह ही का बनाया हुआ उसूल, ठीक है। तो हमने टर्फ के मिसाल से आपको बात समझाई थी, जैसे कि पिच भी होती है हमारे क्रिकेट के अंदर जो है ना वो पिच होती है, तो गोया कि इंसान पिच है, तो पिच के ऊपर अल्लाह का हुक्म अप्लाई होता है, तो पिच उसके मुताबिक भी अल्लाह ही बनाते हैं, ठीक है। तो जिस पिच के अंदर उस हुक्म की इस्तेताअत ना हो उसके ऊपर वो हुक्म लगता ही नहीं है, ठीक है। जिस पिच के अंदर इस्तेताअत ना हो तो उसके ऊपर वो हुक्म लगता ही नहीं है। मिसाल के तौर पर जुमे की नमाज, ठीक है, तो जुमे की नमाज जो है वो क्योंकि अभी हमसे किसी ने मसला पूछा था कि जी वो टांग टूट गई है, ऑपरेशन भी हो गया है, तो अब जो है ना वो जुमे की नमाज में चले गए, और जुमे की नमाज की जो मस्जिद थी उसके अंदर सीढ़ियां थी, तो अब सीढ़ियां चढ़ के जुमा की नमाज पढ़ने के लिए जा रहे हैं, तो भाई जाहिर सी बात है वो तकलीफ बहुत शदीद हो गई, बढ़ गई वो तकलीफ। अब जो है हमसे पूछ रहे हैं कि क्या जुम्मे की नमाज घर पे पढ़ सकते हैं, मतलब छोड़ सकते हैं जुम्मे की नमाज, ये तो नहीं पूछा कि घर पे पढ़ सकते हैं यानी मस्जिद ना जाएं। हमने कहा भाई बिल्कुल नहीं, मतलब जुम्मे की नमाज आपके ऊपर इस हालत में फर्ज ही नहीं है, आप घर में जोहर पढ़ें, ठीक है। तो आप देखें उनकी टर्फ जो है वो इस काबिल नहीं थी कि वो मस्जिद जाके जुमे का, अच्छा सीढ़ी का भी कोई जिक्र नहीं, बस जुमे की नमाज मुतलकन कि मोहल्ले की मस्जिद या जो भी जामा मस्जिद है जहां पे जुमे की नमाज होती है वहां पे आप नहीं जाएं जब आपकी सेहत इतनी खराब हो कि उससे तकलीफ बढ़ जाने का अंदेशा हो, आप नहीं जाएं जुमे की नमाज के लिए, ठीक है। तो तो अल्लाह ताला ने अहकामात ऐसे ही बनाए हैं ना कि किसी की तकलीफ से यानी कैपेसिटी से ज्यादा नहीं बनाए। लेकिन मसला क्या होता है, हम इल्म हासिल नहीं करते इन चीजों का, हम या पूछते नहीं हैं, हम पहले अपना नुकसान कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो है वो या तो पूछते हैं या ये कि फिर अहकामात से बदगुमान हो जाते हैं कि यार ये किस किस्म का हुक्म है, ऐसे तो हमारी तकलीफ पड़ गई। भाई आपके ऊपर तो वो हुक्म लागू ही नहीं होता था, ठीक है ना? तो आपको तो इल्म हासिल करना अल्लाह ताला ने फर्ज किया था ना, तो इल्म हासिल करते आपने वो फर्ज तो पूरा नहीं किया। इल्म हासिल करना फर्ज है ना, ये वाला इल्म हासिल करना जो कि आपके ऊपर अप्लाई होता हो, ये तो फर्ज है। तो जाहिर है आप फर्ज को तोड़ेंगे तो फिर क्या तवक्को करते हैं कि आपकी जिंदगी बेहतर होगी, आपकी मुश्किलात सॉल्व होंगी, आपकी मुश्किलात बढ़ेंगी, तो यही होता है, ठीक है? तो भाई इल्म हासिल करना जो है ना ये हमारे ऊपर फर्ज है। अल्लाह के हुक्म ये मुश्किल नहीं होते, ये हमारी इस्ताद के मुताबिक होते हैं, ठीक है? या तो हम अपनी तरफ से अजम्पशन कर लेते हैं कि नहीं मुश्किल है तो छोड़ देते हैं, या जो है वो हम लाइल्मी में उनके ऊपर अमल करने की कोशिश शुरू कर देते हैं जिसकी वजह से नुकसान हो जाता है, हालांकि वो वैसे नहीं थे, ठीक है? जैसे कि हमने करने की कोशिश करी थी। पर्दे का भी यही मामला है, पर्दा औरतें जो है वो बड़ा मुश्किल है जी, ये है वो है, नहीं कर सकते, ये बड़ा मुश्किल काम है। भाई आप पहले सीखे ना पर्दा कैसे किया जाता है, पर्दा होता क्या है, पहले आप सीखें ना, ठीक है? आप सीखेंगी तो आपके लिए पर्दा करना आसान हो जाएगा, बगैर सीखे अपने तौर पे जो है वो अजम्पशन कर लेती हैं कि बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है, तो करती नहीं है, या जो है वो बगैर इल्म के करना शुरू कर दिया अपनी समझ के मुताबिक, तो वो उल्टी मुसीबत बन गई, उल्टी जो है वो गले पड़ गया। तो दोनों चीजें नुकसान का सबब बनती है ना, उम्मीद है बात समझ में आ रही हो, दोनों। और ये दोनों की बुनियाद इल्म का हासिल ना करना, दोनों की बुनियाद क्या है, इल्म का हासिल ना करना, ठीक है? अच्छा, दोनों गलतियों की बुनियाद है। अच्छा, फिर हमने ये बात कर ली थी, आगे बढ़ते हैं कि इस जमाने में कुरबानी कबूल होने की एक वाजह और खुली हुई अलामत ये थी कि आसमान से एक आग आती और कुर्बानी को खा जाती थी, और जिस कुर्बानी को आग ना खाए तो ये अलामत उसके नामकबूल होने की होती थी। अब सूरत ये पेश आई कि हाबील के पास बकरियां थीं, उसने एक उम्दा दुम्बे की कुर्बानी की। काबील काश्तकार आदमी था, उसने कुछ गल्ला गंदुम वगैरह कुर्बानी के लिए पेश किया। तो हमने पिछली क्लास में इसी वजह से बात कही थी कि खून बहाना वाली कुर्बानी जो है ना ये नबी अलैहिस्सलाम की शरीयत में, ठीक है, कि भाई जानवर का खून बहाना है इसी को कुर्बानी कहा जाता है, गोश्त को सदका करना ये कुर्बानी नहीं है, ये तो आपके अपने ऊपर है, आप गोश्त सदका करें या ना करें, ठीक है, इसका कुर्बानी से ताल्लुक नहीं है, कुर्बानी का ताल्लुक जानवर का खून बहाने से है। लेकिन ये शरीयत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, तो आदम अलैहिस्सलाम की शरीयत में देखें अनाज की कुर्बानी भी थी, ठीक है, एक ने खून बहाया जानवर का, दूसरे ने जो है वो अनाज की कुर्बानी दी, जो जिसके पास अवेलेबल था उसके मुताबिक था, ठीक है? अच्छा, किसी ने क्या लिखा, आई हैव नोटिस दैट समटाइम्स आलिमात फोकस मोर ऑन सर्फ एंड नहव द रूल्स ऑफ बे बट नॉट ऑन मसाइल यूज इन आर डेली लाइफ लाइक द मसला ऑफ द इंजर्ड मैन एंड जुमा, बेसिकली फोकस इज मोर ऑन डिफिकल्ट एंड अनलाइकली टू अकर मसाइल। अच्छा नहीं, ऐसा नहीं है, फोकस नहीं है वो, जब आप भाई आलमा कोर्स जो है ना, ये आलमा कोर्स जो है ना ये एक अलग चीज है, आलिम कोर्स हो या आलमा कोर्स हो, ये एक अलग चीज है, ये दीनी उलूम की हिफाजत के लिए है, ठीक है? ये गलत आपका तस्वर है, अगर आप आलमा कोर्स या आलिम कोर्स को इस नजर से देख रहे हैं ना कि जिसके अंदर डेली मसाइल आपको बताए जाएंगे, दिस इज योर मिस्टेक, दिस इज योर मिस्टेक, ठीक है? ये आलिम और आलमा कोर्स डेली मसाइल के लिए नहीं है, ये दीनी उलूम तफसीली दीनी उलूम की हिफाजत प्रिजर्वेशन के लिए, तो इसके अंदर तो फिर वो चीजें भी आएंगी और ज्यादा आएंगी बल्कि, कि जिनका के डेली मामला से ताल्लुक नहीं है, ठीक है? तो उसके अंदर तो फिर ये सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी ना। अब आप कह रही हैं या कह रहे हैं जो भी हैं कि आई मी मेंट एज एन आफ्टर ग्रेजुएशन, आफ्टर ग्रेजुएशन तो भाई अब उनकी अकल समझ के मुताबिक है कि वो जिस ऑडियंस से बात कर रही हैं या कर रही हैं तो वो उस ऑडियंस के हिसाब से बात कर रही है या अपने हिसाब से बात कर रही है? ये तो अकल का इसका ताल्लुक है ना, इस बात का, इस बात का ताल्लुक आलमा कोर्स और आलम कोर्स के मवाद के साथ नहीं है, इसका ताल्लुक अकल के साथ है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, एनीवे तो अब आप आगे बढ़ते हैं कि जी उसने एक उम्दा दुम्बे की कुर्बानी की, काबिल काश्तकार आदमी था, उसने कुछ गल्ला गंदम वगैरह कुर्बानी के लिए पेश किया, और हुआ ये कि हस्बे दस्तूर आसमान से आग आई, हाबील की कुर्बानी को खा गई और काबिल की कुर्बानी जूं की तू पड़ी रह गई। इस पर काबिल को अपनी नाकामी के सिवा रुसवाई का गम व गुस्सा और बढ़ गया, तो इससे रहा ना गया और खुले तौर पर अपने भाई से कह दिया, ला अब तो लन्नक, यानी मैं तुझे कत्ल कर डालूंगा, जरूर बिल जरूर मैं तुझे कत्ल कर डालूंगा। ठीक है, इसके बारे में बात तर्जुमे भी हुई थी कि बंदा गुनाह करता है, अल्लाह का हुक्म तोड़ता है, अल्लाह के निजाम के खिलाफ जाता है, तो उसको जो है ना वो नाकामी होती है, अब उसको चाहिए कि वो तौबा कर ले ना अपने गुनाह के ऊपर, भाई मेरी गलती थी, तो इस वजह से मुझे जो है वो पिटाई लग रही है, इस वजह से मुझे जो है वो सजा मिल रही है, इस वजह से मुझे रुसवाई हो रही है, तौबा कर ले। अल्लाह ताला तौबा को कबूल करते हैं, माफ कर देते हैं सारे गुनाहों को, लेकिन ये तौबा नहीं करता बल्कि जिद करता है उसके ऊपर, और फिर जो है ना वो कोई दूसरा गुनाह करता है या उसी गुनाह को जो है दोबारा करने की कोशिश करता है, तो फिर उसकी पिटाई होती है। ठीक है, क्योंकि अल्लाह का हुक्म है ना, किसी मासूम बच्चे का, किसी जो है वो नाउज बिल्ला किसी किसी यानी आपके क्या एंड्रॉयड का हुक्म तो नहीं है ना, ये अल्लाह का हुक्म है जिसने सारी कायनात को भी बनाया और तुम्हें खुद भी बनाया, तुम्हें भी बनाया। ठीक है, उसका हुक्म तोड़ोगे तो तुम समझते हो कुछ नहीं होगा तुम्हारे साथ, तो भाई अब पिटाई दोबारा लग रही है, तो अब जो है ना चूंकि तौबा तो इस ये करना नहीं चाहता ना, अब इसको फ्रस्ट्रेशन होती है। ठीक है, अब इसका गुस्सा बढ़ता है। ठीक है, तो यही इसके साथ भी हुआ कि इसका गुस्सा और बढ़ गया क्योंकि इसने तौबा नहीं करी, असल चीज तौबा थी जो इसको करनी चाहिए थी, नहीं करी इसने, तो क्या लिखें। अच्छा, तो हाबील ने उस वक्त भी गुस्से की बात का जवाब गुस्से के साथ देने की बजाय एक ठंडी और उसूली बात करी जिसमें उसकी हमदर्दी व खैरख्वाही भी थी, यानी भाई की हमदर्दी और खैरख्वाही भी थी, कि इन्नमा यतकब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तकीन, यानी अल्लाह ताला का दस्तूर यही है। ठीक है, यानी इसमें कोई आगे पीछे नहीं है कि नहीं कर नहीं करोगे तो कुछ नहीं होता, या कर लोगे तो फायदा नहीं होगा, ना करोगे तो नुकसान नहीं होगा, नहीं, ये सब कुछ नहीं है इसके अंदर। ठीक है, तो इस वजह से इन नमा का लफ्ज इस्तेमाल किया सिवाय इसके नहीं के, इसके अलावा कोई दूसरा दूसरी पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि अल्लाह ताला तो मुत्तकी परहेजगार का अमल कबूल फरमाता, अगर तुम तकवा पर वह परहेजगारी इख्तियार करते तो तुम्हारी कुर्बानी भी कबूल होती, तुमने ऐसा नहीं किया तो कुर्बानी कबूल ना हुई, इसमें मेरा क्या कसूर है भाई? ठीक है, लेकिन जो जिद्दी आदमी होता है वो फिर दूसरे का कसूर समझता है, अपना कसूर उसको नजर ही नहीं आता, शैतान ने धोखा दे दिया होता है ना, वो दूसरों का कसूर देख रहा होता है अपना कसूर नहीं देख रहा होता, यही शैतान करता है, इससे ज्यादा शैतान कुछ नहीं कर सकता। जिधर अपने आप को देखना होता है उधर वो कहते हैं तुम दूसरों को देखो, जिधर दूसरों को देखना होता है उधर कहते हैं तुम अपने आप को देखो। इसके बरक्स शेख क्या करता है, शेख बिल्कुल ऑपोजिट काम करता है, वो कहता है जहां पे दूसरों को देखना था वहां दूसरों को देखो, जहां अपने आप को देखना था वहां अपने आप को देखो। ठीक है, यानी अल्लाह का उसूल जिधर जिस वक्त देखने का है ना उधर उसी उसूल के मुताबिक बात करो, तो शेख कौन से थे, शेख अकबर हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शेख अकबर, तो उन्होंने फिर यही शैतान के ऑपोजिट उसूल बताया कि दुनिया के मामलात में कि दुनिया किस के पास ज्यादा है, दुनिया किसके पास ज्यादा है, तुम अपने से नीचे वालों को देखो कि देखो वो तो इतना बेचारा इतनी मुश्किल में है, उसके पास जो है वो जॉब भी नहीं है, अल्लाह का शुक्र है मेरे पास जॉब है। ठीक है, उसके पास सेहत अच्छी नहीं है, मेरे पास सेहत है, उसके पास औलाद नहीं है, मेरे पास औलाद है, उसको गाड़ी नहीं है, मेरे पास गाड़ी है, तो दुनिया के मामला में देखने का बता दिया कि किधर देखना है, किस डायरेक्शन में देखना है। ठीक है, और फरमाया कि दीन के मामला में अपने से ऊपर वालों को देखो जो तुमसे भी बेहतर है ईमान और अमल सालेह में, तुमसे भी बेहतर है, तुम उनको देखो। ठीक है, तो देखिए इट्स ऑल अबाउट लुकिंग है ना, शैतान जो है वो लुकिंग में ही उल्टा करवा रहा है, कि दुनिया के मामलों में कहता है कि अपने से ऊपर वालों को देखो और उनके जैसे बनने की कोशिश करो, और दीन के मामले में अपने से नीचे वालों को देखो ताकि खुश रहो अपने अपने बारे में कि देखो मैं तो इतना अच्छा दीनदार हूँ, वो तो नमाज भी नहीं पढ़ता, मैं तो इतना अच्छा जो हूँ ना वो दीनदार हूँ, मैं तो ये भी करता हूँ वो भी करता हूँ ये भी करता हूँ, और वो तो कुछ भी नहीं करता है, उल्टा मामला ना। ठीक, तो यही मामला जो है ना वो कसूर वसूर के चक्करों में भी यही होता है कि भाई अपने आप को देखो, अपने गिरबान में झांक के देखो अपने क्या किया है, लेकिन बस भाई दूसरों को देखता है कि उसने ये कर लिया उसने वो कर लिया। तो इस कलाम में हासिद के हसद का इलाज भी जिक्र कर दिया गया है कि हासिद को जब यह नजर आए कि किसी शख्स को अल्लाह ताला ने कोई खास नेमत अता फरमाई है जो इसको हासिल नहीं, तो इसको चाहिए कि अपनी महरूमी को, अपनी अमली को, ताही और गुनाहों के सबब से समझकर उनसे तायब होने की फिक्र करे, ना ये कि दूसरे से उस नेमत के जवाल की फिक्र में पड़ जाए, क्योंकि ये उसके फायदे की बजाय जरर का सबब है, क्योंकि मकबूलियत मकबूलियत इंद अल्लाह का मदार तकवा पर। ठीक है, हासिद को भी शैतान इसी तरीके से हसद में मुबतला करता है कि बजाय इसके कि ये सोचे कि अगर मेरे पास अल्लाह की नेमतें नहीं हैं, ठीक है, तो अल्लाह की कोई हिकमत होगी, या तो मेरे अपने गुनाह हैं कि जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने मुझे नेमतों से महरूम किया हुआ है, ठीक है, और अगर मैं गुनाह वाकई कंफर्म्ड ये बात कि मैंने गुनाह नहीं किया था, तो फिर मेरे पास नेमत क्यों है, क्यों नहीं है, क्योंकि ये अल्लाह की तकसीम है, ठीक है, तो मुझे अल्लाह की तकसीम पर राजी रहना चाहिए, ये उसूल की बात यही है, ठीक है। लेकिन शैतान कहता है कि नहीं, उसके पास नेमत क्यों है ना, वो ये नहीं देखता कि उसने अल्लाह के शुक्र अदा किया है तो अल्लाह के उसूल के ला इन शकर तुम ला अजीदन्नकुम उसके मुताबिक उसकी नेमतें बढ़ रही हैं, ठीक है, ये नहीं देखता कि वो शुक्र अदा कर रहा है इस वजह से उसके पास नेमत है, और मैं कुफरान नेमत कर रहा हूं जो है उसके ऊपर भी शुक्र नहीं करता, तो इस वजह से मेरी नेमतें घट रही हैं, क्योंकि ये फिर अजाब अजाब का मतलब होता है नेमतें छिन जाती हैं, फिर तो मेरे पास नेमतें कम हो रही हैं क्योंकि मैं शुक्र नहीं करता, ये नहीं देखता उसके बारे में क्यों उसके पास बढ़ रही है। तो हसद उस बीमारी को कहते हैं, रूहानी बीमारी को, कि अगले बंदे के नेमतों को देख करके ये नहीं सोचे कि काश मुझे भी ये नेमतें मिल जाती, बल्कि सोचे या ये कुड़ता रहे, फिक्र करता रहे कि उसके पास जो नेमत है ना वो खत्म हो जाए, उसके पास भी नेमत खत्म हो जाए, इस वजह से बदतरीन रूहानी बीमारी है ये हसद। और ये भी मशाइख ने लिखा कि सबसे पहले जो गुनाह किया गया वो हसद का ही था, जो कि हाबिल और काबिल के माबैन ये वाला मामला हुआ, ठीक है, और ये तो जमीन पर हुआ ना, आसमानों पर भी सबसे बड़ा गुनाह, सबसे पहला गुनाह वो भी हसद का ही था आसमानों पर भी, वो क्या कि शैतान को हसद कि ये आदम को ये मुकाम क्यों मिल गया, कि अल्लाह ताला उससे इतना खुश उनसे इतना खुश और उनको जन्नत में भी दाखिल कर दिया, ये क्यों मिल गया उनको मकाम, अब वो इसमें कुढ़ता रहा कि किसी तरीके से आदम से ये मुकाम छीन लिया जाए, आदम जन्नत से निकल जाए और अल्लाह ताला की निगाहों से गिर जाए, ठीक है, लगा रहा इस मेहनत में हत्ता के उसने इसमें टेम्पोरारीली कामयाबी हासिल कर ली, आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से भी निकलवा दिया, और वही अल्लाह ताला के यहाँ फिर उस वक्त एक ये वाला भी मामला हुआ, बाद में आदम अलैहिस्सलाम ने तौबा कर ली, फिर उनको वो मकाम तो मिल गया लेकिन जन्नत से तो निकल गए, तो ये हसद ही तो था शैतान का, ठीक है, तो आसमानों पर भी पहला गुना हसद का हुआ, जमीन पर भी पहला गुना हसद का, ठीक है, तो कितनी बड़ी कितना बड़ी चीज है ये, बुरी चीज है ये, और इसकी वजह क्या बनी, बस वही है ना कि डॉक्टर जो होता है ना वो जब तक डायग्नोसिस ना करे उस वक्त तक चैन नहीं आता उसको, क्योंकि डॉक्टर का काम ही है अभी क्यों बीमारी हुई क्यों नुकसान हुआ, ठीक है, ये डॉक्टर का काम है, तो इस वजह से बार बार ये बात क्यों हुआ ये, भाई इसीलिए कि आपने जो है वो शेख की बात मानने की बजाय शैतान की बात मानी, शेख की बात मान लेते तो अपने गिरेबान में झांक करके देखते, और शैतान की बात मान लिया आपने तो इस वजह से आप दूसरे के ऊपर देख रहे हैं, अपने अपने गिरेबान में झांक के नहीं देख रहे कि आपने क्या किया, प्लेन एंड सिंपल, बिल्कुल बिल्कुल सिंपल है ये बात, कोई इसके अंदर रॉकेट साइंस नहीं, आगे जाने। قبولیت عمل کا مدار اخلاص و تقوی پر ہے. یعنی اعمال کیا چیز ہوتے ہیں؟ کہ آپ نے قربانی کری، آپ نے صدقہ خیرات کیا، آپ نے نمازیں پڑھی، آپ نے حج کیے، عمرے کیے، یہ سب اعمال کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے؟ کیا یہ قبول ہو رہے ہیں؟ کچھ پتا نہیں کہ ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں، تو اس کی شرط بتا دی اللہ تعالیٰ نے. ٹھیک ہے؟ کہ واقعی یہ قبول بھی ہو رہے ہیں، یعنی جنت میں یہ کرنسی میں کنورٹ بھی ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں. جیسے مثال کے طور پر آپ کرنسی ایکسچینج کے پاس چلے جائیں، آپ کے پاس جو ہے نا وہ $10,000 ہیں. ٹھیک ہے؟ اب $10,000 جو ہے نا وہ آپ نے کرنسی ایکسچینج میں دے دیے کہ بھئی یہ جو ہے نا اس کے تم مجھے ریال کنورٹ کر کے دے دینا. ٹھیک ہے؟ اب کرنسی ایکسچینج میں آپ کے ڈالر تو چلے گئے، آپ بڑے خوش ہیں، ہو جی میں تو $10,000 دے کر کے آیا ہوں، ابھی تو مجھے کتنے ملیں گے، 37,500، 3.75 کا ریٹ لگتا ہے، تو 37,500 ریال ملیں گے. ادھر سے کرنسی ایکسچینج نے جب آپ کے ڈالر دیکھے تو اس کے اندر جو ہے نا وہ کوئی وہ تھا نا، پہلے ایک زمانے میں ہوتا تھا وہ کوئی سیریز کا مسئلہ ہوتا تھا کہ اس میں یہ سیریز ہے تو یہ ایئر ہے، تو وہ قبول نہیں ہوتے تھے. اس نے دیکھا اس کے اندر تو یہ والا مسئلہ ہے، اس نے کہا کہ ٹھینگا ملے گا تمہیں، 37,500 ریال کوئی نہیں ملنے والے ہیں تمہیں، زیرو ملیں گے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ کچھ سکیم وغیرہ کے چکر میں نا پولیس تمہیں پکڑ کر کے لے جائے کہ تم یہ ڈالر کدھر سے لے کر کے آئے ہو، تمہیں پولیس ہی پکڑ کے لے جائے الٹا. تو یہ تو بڑے خوش کہ مجھے تو یہ ریال ملیں گے. ادھر ان کو تھانے میں پہنچا دیا گیا، جیل میں پہنچا دیا گیا، تو ان ڈالروں کا کیا فائدہ ہوا پھر؟ یہی معاملہ ہمارے اعمال کا ہے. ٹھیک ہے؟ تو یا تو اعمال رد ہو گئے تو کچھ بھی نہیں ملا، اگر ایسے تھے کہ جن میں نیت ہی گندی تھی، خراب تھی، ٹھیک ہے، بدنیت کے ساتھ اعمال کیے تھے تو پتا چلا جہنم کی جیل میں پہنچے ہوئے. کیونکہ ایسے اعمال ہیں نا کہ جن کے بارے میں نبی نے فرمایا کہ اگر اللہ کی رضا کے علاوہ کسی اور مقصد کے لیے یہ کیا جائے تو اس کے اوپر جو ہے نا وہ جہنم کی وعید، حدیث مبارکہ کا مفہوم بنتا ہے، جہنم کی وعید ہے اس کے اوپر. جیسے دین کا علم حاصل کرنا، دین کا علم حاصل کرنا یہ ان اعمال میں سے ہے، اگر نیت صحیح نہیں ہو تو پھر یہ. ٹھیک ہے؟ تو یہاں حابیل و قابیل کی باہمی گفتگو میں ایک ایسا جملہ آ گیا جو ایک اہم اصول کی حیثیت رکھتا ہے کہ اعمال و عبادات کی قبولیت تقوی اور خوف خدا پر موقوف ہے، جس میں تقوی نہیں اس کا عمل مقبول نہیں. اسی وجہ سے علماء سلف نے فرمایا، یعنی فرسٹ 3 جنریشنز کے جو علماء اہل حق تھے، ظاہر صحابہ تو سارے کے سارے تھے نا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، لیکن جو اگلی جنریشن تھی تابعین کی، ان میں سے تابعین کون کہلاتے ہیں؟ جنہوں نے صحابہ سے علم حاصل کیا، دین سیکھا اور اس کے مطابق جو ہے نا وہ عمل کر. نام مسلمان تو سارے ہی تھے، یعنی تابعین does not mean کہ صحابہ کے بعد جتنے لوگ دنیا میں پیدا ہوئے اور مسلمان ہوئے وہ سارے تابعین ہیں. نو، سارے تابعین نہیں ہیں. ٹھیک ہے؟ بلکہ جو صحابہ کے راستے پہ چلے، ٹھیک ہے، مسلمان تو تھے لیکن جو صحابہ کے راستے پہ چلے وہ تابعین کہلاتے ہیں، اور جو صحابہ کے راستے پہ نہ چلے نا وہ، یہ نہیں کہ جسٹ بیکاز یو آر بورن ان دیٹ جنریشن. صحابہ کا یہ معاملہ نہیں تھا، صحابہ کا یہ معاملہ نہیں تھا. کیونکہ ہر صحابی صحابی ہے ہی اس لیے کیونکہ نبی علیہ السلام جی کو اس نے ایمان کی حالت میں دیکھا اور ایمان کی حالت میں موت آئی اس کو. ٹھیک ہے؟ درمیان میں مرتد بھی نہیں ہوا. ٹھیک ہے؟ جو مرتد ہوئے، چند ایک ہوئے کچھ اپنی غلطیوں کی وجہ سے، پھر بعد میں مسلمان ہو گئے، وہ صحابیت سے نکل گئے، وہ صحابیت سے نکل گئے. ٹھیک ہے؟ اس وجہ سے صحابی کی جو تعریف ہے نا یہ بھی بڑی اہم ہے جاننا کہ صحابی ہوتا کون ہے. جو نبی علیہ السلام کے زندگی میں ایمان لے کر کے آیا، ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنی اس نے، اگر دیکھا نہیں بھی پھر بھی آواز سنی، جیسے نابینا صحابی، انہوں نے تو دیکھا ہی نبی علیہ السلام کو، لیکن وہ بھی صحابی ہیں کیونکہ آواز تو سنی نا انہوں نے، کسی عورت نے پردے کی وجہ سے نہیں دیکھا نبی علیہ السلام، کوئی وجہ بنی لیکن سن لیا، وہ بھی صحابی. لیکن اویس کرنی وہ صحابی نہیں بن سکتے، انہوں نے دیکھا نہیں نبی علیہ السلام نہ آواز سنی. لیکن اس کے بعد دوسری چیز کہ بھائی وہ موت تک ایمان پر ہی رہے، और इसी हालत में उनको ईमान पे मौत आई, तब वो सहाबी हैं। क्योंकि चंद एक ऐसे भी थे कि जो कि मुर्तद होके मर गए, हालांकि वो नबी अलैहिस्सलाम के हाथ पर ईमान आ चुके थे, लेकिन दैट वाज एन एक्सेप्शन, बहुत ही कम, एक आध दो 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 तीन लोग बस। ठीक है, तो ये सहाबी की डेफिनेशन है। तो सहाबी तो सारे लोग जो कि इस डेफिनेशन पे पूरे उतरते हैं, वो सारे के सारे सहाबी। ठीक है, लेकिन अगली जनरेशन में तो फिर ऐसे भी तमाशे हुए ना बहुत सारे, तो हर बंदा फिर ताबीन के मुकाम के ऊपर नहीं पहुंचा। तो ये पहली, और फिर तबा ताबीन का भी मामला कि ताबीन के साथ जिसका ऐसा मामला हुआ फिर वो तबा ताबीन में शामिल हुआ। तो ये जो है ना फिर वो तीन जनरेशन, ये सलफ की जनरेशन हो गई। ओवरऑल खैरुल कुरून करनी का मतलब ये है कि चूंकि मेजोरिटी जो थी वो कंट्रोल्ड थी, शरी उसूलों के मुताबिक हुकूमत चल रही थी, मुआशरे के उसूल शरीयत के उसूलों के मुताबिक थे, तो इस वजह से पूरा जमाना खैर का जमाना कहलाएगा। ठीक है, तो खैरुल कुरूनी करनी सुम्मा लजीना यलूनहुम सुम्मा लजीना यलूनहुम। तो सहाबा का तो पूरा जमाना था, लेकिन ताबईन का जमाना क्यों? क्योंकि ऊपर से कवानीन जो है वो सारे के सारे शरीयत के मुताबिक नाफिज थे, तो वो पूरा ओवरऑल जो सिस्टम था वो खैर का सिस्टम था। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि हर बंदा जो उस जमाने में जिंदा था और अपने आप को मुसलमान कहता था तो वो जो है वो ताबीन था, और अगले जनरेशन वाला जो है वो तबा ताबीन था। बहरहाल इसमें और भी हमारे लिए इबरत की बातें हैं, लेकिन अभी इसका वक्त नहीं, आगे चलते हैं। कि इसी वजह से उलमाए सलफ ने फरमाया है कि ये आयत इबादत गुजारों और अमल करने वालों के लिए बड़ा ताजियाना है। यही वजह थी कि हजरत आमिर बिन अब्दुल्ला, ये भी ताबई थे और बहुत जाहिद इबादत गुजार ताबई थे, ये अपनी वफात के वक्त रो रहे थे, तो लोगों ने अर्ज किया कि आप तो उम्र भर आमाल सालेहा और इबादात में मशगूल रहे, फिर रोने की क्या वजह है? तो फरमाया कि तुम ये कहते हो और मेरे कानों में अल्लाह ताला का ये इरशाद गूंज रहा है, इन्नमा यतकब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तकीन, मुझे कुछ मालूम नहीं कि मेरी कोई इबादत कबूल भी होगी या नहीं होगी। ठीक है, हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर मुझे यकीन हो जाए कि मेरा कोई अमल अल्लाह ताला ने कबूल फरमा लिया, तो ये वो नेमत है कि सारी जमीन सोना बनकर अपने कब्जे में आ जाए तो भी इसके मुकाबले में कुछ ना समझू। ठीक है, यानी कबूलियत का एक अमल भी जो है ना वो भी इनके निगाहों में इतना कीमती होता था, सारी जमीन सोने बनने से ज्यादा इनके लिए। अच्छा, किसी ने सवाल किया दे रहा है जो टर्म कॉल्ड सेल्फी, आजकल सेल्फी की टर्म ज्यादा मशहूर है, तो वो एग्जैक्टली आर सेल्फीज, दे क्लेम दैट दे आर ऑन द मनहज ऑफ सलफ। ठीक है, तो वो क्लेम करते हैं और अपने आप को सल्फी कहते हैं। अच्छा, फिर आगे फरमाया कि इसी तरह अबू दरदार रजी अल्लाह तआला ने फरमाया कि अगर ये बात यकीनी तौर पर तय हो जाए कि मेरी एक नमाज अल्लाह ताला के नजदीक कबूल हो गई, तो मेरे लिए वो सारी दुनिया और उसकी नेमतों से ज्यादा है। ठीक है, अभी जो है ना ये तकवा के बारे में बात हो रही है, अभी सल्फी और सुल्फी की तरफ जहन का जाना ये खतरनाक है। ठीक है, या आपका जहन इस वक्त जो है वो सल्फी की तरफ जा रहा है, ये खतरनाक बात है, इस पे फिक्र करने की जरूरत है और तौबा करने की जरूरत है, क्योंकि इस वक्त जो है वो तकवा की बात हो रही है और ये इतनी अहम चीज है कि आपकी सारी जो है ना वो इख्तलाफी मसाइल इसके नजदीक खींचे। ठीक है, तो इसके ऊपर फोकस करें, या नहीं हो रहा फोकस अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह मुझे फोकस करने में मदद फरमा दीजिए। ठीक, क्योंकि ये बेकदरी नाकदरी होगी इस इल्म की जो कि इस वक्त आपको पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, तो जहां अपनी नाकामी हो रही हो वहां अल्लाह ताला है ना मदद करने के लिए, तो अल्लाह ताला से दुआ मांगे दिली दिली में, अभी फौरन शुरू हो जाए, अल्लाह मदद फरमाती है, अल्लाह मैं नाकदरी का मुजरिम नहीं बनना चाहता। ठीक है, तो अबू दरदा ने फरमाया कि अगर ये बात यकीनी तौर पर तय हो जाए कि मेरी एक नमाज अल्लाह ताला के नजदीक कबूल हो गई है, तो मेरे लिए वो सारी दुनिया और उसकी नियमतों से ज्यादा है। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह ने एक शख्स को खत में ये नसाह लिखी कि मैं तुझे तकवा की ताकीद करता हूं जिसके बगैर कोई अमल कबूल नहीं। ठीक है, कोई अमल, चाहे वो नमाज रोजे ज़कात का हो या इल्म हासिल करने का हो या अमल करने का हो या दीन के निफाज का कोई अमल हो, कि दीन जो है ना वो क्या कहते हैं, इकामत दीन वाले अमाल, वो भी तो अमाल है ना, इकामत दीन के लिए, और जो है वो बातिल फिरकों से जो है वो हक की जो है वो जद्दोजहद करना, ये भी इकामत दीन के अमाल में आता है। ठीक है, कुछ भी कबूल नहीं है, कुछ भी कबूल नहीं है, ना मुसल्ले का अमल, ना माली इबादत, ना जो है वो जानी इबादत, ना जो है वो मैदान जंग की इबादत, ना जो है वो मैदान इल्म की इबादत, कुछ भी कबूल नहीं, बजाय सवाय यानी तकवा के बारे में कुछ भी कबूल नहीं। ठीक है, तो दिस इज नॉट इनसिग्निफिकेंट या दिस इज नॉट लेस सिग्निफिकेंट है, बिकॉज फिर बच क्या रहा था हमारे पास, अगर कोई अमल कबूल ही ना होगा तो वही बात हो गई, वही वही $10,000 वाले बंदे वाला मामला हो जाएगा हमारे साथ। ठीक है, तो फरमाया कि मैं तुझे तकवा की ताकीद करता हूं जिसके बगैर कोई अमल कबूल नहीं होता, और अहले तकवा के सिवा किसी पर रहम नहीं किया जाता, तो रोने धोने का कोई फायदा नहीं होगा, मेरे ऊपर ये क्यों किया गया, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ वैसा हुआ, भाई आप तकवा इख्तियार करें ना, वरना आपके ऊपर रहम नहीं किया जाएगा, आप कोई स्पेशल चीज नहीं है कि आप यानी कि आपको आपके खानदानी नस्ल की वजह से जो है वो आपके ऊपर रहम शुरू कर दिया जाएगा या किसी और आपकी शक्लो सूरत की वजह से आपके ऊपर रहम शुरू कर दिया जाएगा, नहीं, अहले तकवा के सिवा किसी पर रहम नहीं किया जाता और इसके बगैर किसी चीज पर सवाब नहीं मिलता। इस बात का वाज कहने वाले तो बहुत हैं मगर अमल करने वाले बहुत कम। ठीक है, हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह ने ये वाज किया और इसमें ये भी आखिर में कह दिया कि भाई करने वाले तो बहुत हैं, ये नहीं कहा कि मैं हूं इस पे करने वाला, तुम करने वाले नहीं हो, ये नहीं कहा, बल्कि एक उसूल की बात कर दी कि मैं भी फिक्रमंद हूं कि क्या मैं भी अमल कर रहा हूं अपने वाज के ऊपर या नहीं, और तुम्हें भी फिक्रमंद होना चाहिए। हजरत अली मुर्तजा रजी अल्लाह तआला ने फरमाया कि तकवा के साथ कोई छोटा सा अमल भी छोटा नहीं है, और जो अमल मकबूल हो जाए वो छोटा कैसे कहा जा सकता है, ठीक है, यानी छोटा अमल भी मकबूल हो जाए तो वो छोटा नहीं होता, बल्कि किसके पास मकबूल हुआ है, अल्लाह के पास मकबूल हुआ है ना, अल्लाह के अलावा कोई है जो कि कबूल करने वाला है, तो अल्लाह कबूल कर ले तो फिर वो छोटा अमल भी बड़ा हो जाता है, क्योंकि अब वो अल्लाह के यहां पहुंच चुका है ना, अब उसको निस्बत अल्लाह के साथ हो गई, तो निस्बत से बुलंदी मिलती है ना, निस्बत से अजमत मिलती है। ठीक है, तो अल्लाह से निस्बत हो गया आपके इस छोटे से अमल को, अब वो अमल छोटा नहीं रहा, बड़ा हो गया। उन्होंने लिखा कि तकवा के कुछ लेवल्स भी, जी इंशाल्लाह आते हैं उसके ऊपर, इरादा था कि तकवा को समझना भी बहुत जरूरी है कि ये है क्या, तो इस वजह से रिपीटेशन के तौर पर, दोहराई के तौर पर, मानने वालों के लिए याद दहानी फायदेमंद होती है। ठीक है, तो इस वजह से तकवा के बारे में कुछ याद दहानी, क्योंकि अगर तकवा बाइनरी हो तो फिर तो हमारा कोई भी अमल काबिल कबूल, हमारा कोई भी अमल कबूल नहीं होगा, यानी वन या जीरो है या नहीं है। ठीक है, तो बेशक ऐसे ही है कि हमारा तो तकवा के मामले में जीरो ही मामला होगा, तो हम तो फिर मारे गए सारे के सारे, और ये तो फिर मायूसी वाली बात भी हो जाएगी और शैतान को मौका मिल जाएगा कि भाई तुम तो तुम्हारा तो कुछ भी कबूल नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से तकवा का जो है ना वो समझना कि भाई ये है क्या, जैसे पीछे भी कई दफा बात हुई है आपके सामने कि हम ईमान बनाना की बात तो सुनते रहते हैं, कहते भी रहते हैं, लेकिन हमें अगर इस तारीफ का नहीं पता कि ईमान क्या चीज होती है तो फिर रेपिटेशन का फायदा नहीं है। उसी तरह तकवा भी, क्योंकि ईमान के बाद फिर बात तकवा की उम्मीद तौर पर की जाती है, तो फिर नेक्स्ट सेकेंड इन लाइन इज तकवा। तो तकवा के लिए सबसे पहली बात कि इसकी जो मिनिमम बेयर मिनिमम लोएस्ट लेवल है ना, वो है ईमान का, ईमान। ठीक है, यानी नबी अलैहिस्सलाम जो दीन लेकर के आए हैं उसके ऊपर 100% एतमाद होना, शक ना होना या इनकार ना करना, ठीक है, 100% के ऊपर एतमाद होना कि ये सच है, जैसा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जैसा हदीस के अंदर लिखा हुआ या कुरान मजीद के अंदर लिखा हुआ। वो भी नबी अलैहिस्सलाम ही लेकर आए हैं कुरान मजीद के भी सारी आयात। वल्लज़ीन जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, ये क्या चीज है? ये कुरान मजीद की आयत है जो नबी अलैहिस्सलाम लेकर आए, हम तक पहुंचाई। ठीक है ना, जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आपसे हमको पहुंचाई, आपसे ने हम तक पहुंचाई। वल्लज़ीन जाहदू फीना लनहदियन्नहुम, के जो हमारे रास्ते में मेहनत करता है, मुजाहिदा करता है, हम जरूर बिन जरूर उसके लिए रास्ते हमवार करते हैं। अब हम कहें नहीं मेरे तो नहीं हो रहे, हमार तो ऐसे ही है, बस ये बस कहने की बात है, ये होता होता कुछ नहीं है। मैंने तो नेकी भी करी, मैंने तो गुनाहों को भी छोड़ा, मैंने तो सोबत भी अख्तियार करी, मैंने तो अजकार भी किए, मैंने तो ये भी किया, मेरे तो सामने रुकावट ही रुकावट है। तो ये जो है ना, ये वाली आयत जो है ना, ये मेरा ख्याल है कि ये ठीक नहीं है, बाकी ठीक होंगी लेकिन ये ठीक नहीं है। तो ये तो ईमान ना हुआ, ये तो कुफर हो गया। ठीक है, तो अब जो है ना वो करे चले जा रहे हैं, नेम इबादतें करे चले जा रहे हैं, सदका खैरात भी करे चले जा रहे हैं, लेकिन इस आयत के ऊपर नहीं जी कोई मदद वदद कोई नहीं होती, कोई रास्ता वास्ता नहीं खुलता है। तो अब ये तकवा इख्तियार करने का इनको कोई फायदा नहीं है क्योंकि ईमान ही नहीं है। ठीक है, सच बोल रहे हैं तो आगे से जो है वो फलाना गुस्सा हो गया तो फलाना नाराज हो गया, झूठ से बच रहे हैं तो फलाना नाराज हो गया, और यार ये तो झूठ बोलना उल्टा मेरे, झूठ ना बोलना उल्टा मेरे गले पड़ जाता है, सच बोलना जो है ना ये तो मेरे गले पड़ जाता है, तो कोई कोई रास्ते नहीं खोलता, कोई मदद ही नहीं आती। ठीक है, तो ये इस आयत के ऊपर, इस आयत का इनकार हो गया। ठीक है ना, या ये कि कोशिश भी नहीं कर रहे, बस पहले ही डर के मारे बैठे हुए हैं कि नहीं, अगर मैंने सच बोल दिया तो फलाना नाराज हो जाएगा, वो नाराज हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो बोल ही नहीं रहे सच। ठीक है, झूठ से ही काम चला रहे हैं, तो ये आयत उसका इनकार हो गया। ठीक है, भाई अल्लाह ने वादा किया कि जी मैं आपके लिए आगे रास्ते खोलूंगा, और आप कह रहे हैं कि नहीं, कुछ नहीं खुलता, कोई रास्ता वास्ता नहीं खुलता। ठीक है, तो तकवा की जो बेर मिनिमम लेवल है वो ईमान है, इसके बगैर तकवा नहीं हो सकता कि कोई बगैर ईमान के बहुत मुत्तकी बन जाए, सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा, फिर इसके बाद जो है वो, इसके बाद अगले लेवल पर आए तो मशाइख पे बहुत तफसीलात हैं तकवा के, बड़े बड़े अकवाल। हजरत जी का हमारा कोई बयान सुन लीजिए, हमारे हजरत जी रहमतुल्लाह अलैह का तकवा के मौजू के ऊपर, आपको पता नहीं क्या क्या जबरदस्त बातें आपको सुनने को मिलेंगी। लेकिन इस आज इसको जो याद पड़ता है अभी अपने मशाइख की बातों में से, वो आपके सामने, कि फिर दूसरे दर्जा अगर आप रहें तो वो रिश्ते हलाल और सिदके मकाल, तकवा का ईमान के ऊपर फिर दर्जा क्या कहलाएगा? रिश्त हलाल हो और सिदक, सिदके मकाल यानी बात में सच्चाई। ठीक है, झूठ के साथ तकवा नहीं हो सकता। अब हमें तौलिया का मतलब नहीं पता, हम झूठ बोल रहे होते हैं तौरिया समझ करके, उसको जायज समझ रहे होते हैं, भाई नहीं, तौरिया अलग चीज है और झूठ अलग चीज है, और मैदान जंग के अंदर धोखा देना दुश्मन को, इसके ऊपर भी बहुत तफसील से बात हो चुकी है कि वो हालत जंग में है, जब काफिर के साथ पीस एग्रीमेंट हो गया, जब अभी जंग शुरू नहीं हुई है, तो अब आप काफिर को भी धोखा नहीं दे सकते। तो अल हर्ब खुदा, वो हालत जंग है, चाहे वो हालत जंग मैदान जंग में ना हो, बल्कि आजकल जैसे दूसरे चल तरीके चल रहे हैं। ठीक है, लेकिन वो डिक्लेयर्ड एक वॉर है, चाहे वो आपके क्या कहते हैं, वो जो क्या कहते हैं, आईटी वाली वॉर जो होती है, लफ्ज होता है ना उसका, तो जो भी है, लेकिन वो हालत अमन को, और बाकी आम हालात में जो किसी साइबर वॉरफेयर, हाँ साइबर वॉरफेयर भाई, वो डिक्लेयर्ड वॉरफेयर जब हो रही है तो साइबर में हो रही हो, कि वो स्पेस में हो रही हो, या जो है वो आपके पानी में हो रही हो, या आपकी हवा में हो रही हो, या आपके लैंड पे हो रही हो। ठीक है, लेकिन डिक्लेयर्ड वॉर है ना, उसमें फिर वो हर्ब का मामला है, हर्ब खुदा, उसके अलावा कोई थोड़ी है भाई काफिर के साथ जो है वो आप झूठ बोलते चले जा रहे हैं। ठीक है, और फिर इसके बाद ये कि जो आम लोग हैं उनके अंदर जो आप झूठ बोल रहे हैं, तो भाई वो तौरिया इज नॉट झूठ एंड झूठ इज नॉट तौरिया, दो अलग अलग चीजें। ठीक है, तो इसको सीखने की जरूरत है। तरफ से नहीं जायज कर सकते ना, झूठ को तौबे बना के। तो रिश्ते हलाल यानी रिस्क हलाल हो और सिद्क के मकाल। अब हलाल रिस्क के लिए भी आजकल जो है वो इल्म हासिल करना बड़ा जरूरी है, क्योंकि ये सारी चीजें इतनी सोफिस्टिकेटेड होती हैं। बैंक की जॉब है तो फलाना जो है वो आपका ट्रेड एग्रीमेंट है, तो आपके जो है वो स्टॉक एक्सचेंज मार्केट से जो है वो आप कमा रहे हैं, या आप जो है पता नहीं स्पॉट ट्रेडिंग भी है वो भी नाजायज है, तो गोल्ड के अंदर अगर आप ट्रेडिंग करेंगे तो वो कैसे जायज होगी, और फलाना ढमकाना, यानी गहरे कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लिकेशन बढ़ गई है इसके अंदर। तो रिस्क हलाल इसके लिए फिर रेलिवेंट इल्म की जरूरत पड़ेगी, ताकि रिस्क हलाल हो सके। जितना आप कर तो सकते हैं, इतना जितना कर सकते हैं उतना तो करें ना हलाल। और सिद्के मकार फिर उसके बाद और बढ़े इसके आगे, तो मकरूहात शरईया मकरूहात तबईया बन जाए, कि शरीयत जो है ना जिस चीज को मकरूह कहती है तो वो हमारी तबीयत भी उसको मकरूह यानी कराहियत होनी शुरू हो जाए उसके साथ। ठीक है, तो ये सिर्फ दर्जे हैं। किसी शेख का हजरत नकल किया करते थे कौल, कि तकवा वो है कि दिल की तमन्नाओं को अगर तश्तर तश्त के ऊपर रख के, आपके दिल की तमन्नाओं को ना बाकायदा किसी फॉर्म दे करके तश्त के ऊपर रख दिया जाए और वो सबके सामने फिराई जाए कि देखो ये इसके दिल की तमन्ना है, तो उनमें कोई ऐसी तमन्ना ना हो आपके दिल में के जो आपके लिए शर्मिंदगी का सबब बने कयामत के दिन। ठीक है, ये अगर मैं ये कर लेता तो कितना अच्छा होता। ठीक है, या माजी में जो गुनाह किए थे तो अब उनके बारे में दिल में तमन्ना है कि हाँ कितने अच्छे दिन थे जब हम ये किया करते थे। ठीक है, तो ये भी दिल की तमन्ना की ही फॉर्म है नहीं, बल्कि जो माजी में गलत हो गया उसके ऊपर नदामत का की कैफियत हो दिल के अंदर, और आगे कोई भी ऐसी चीज करने का दिल के अंदर तड़प भी ना हो, दिल के अंदर तलब ही ना हो, ये जो कि अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। तो तकवा के ऊपर तो फिर बहुत तफसीलात हैं, लेकिन कम से कम इतना करके हम आज की क्लास फिर यहीं पे खत्म कर देते हैं। कोई सवाल वगैरह कोई हो तो जुर्म सजा के चंद कानून कुरानी जाबते ही इंशाल्लाह पहली क्लास में नफ्स करेंगे। तौबा की हालत में रहना, हाँ तौबा की हालत में रहना, ये अगर गुनाह इंसान छोड़ नहीं भी पा रहा तो नादिम, हर वक्त नादिम रहे अल्लाह ताला के साथ में, वो तौबा करता रहे। जैसे हजरत मिसाल दिया करते थे कि अगर इस बात का भी यकीन हो कि मैं कल फिर यही गुनाह करूंगा, ठीक है, क्योंकि मैंने तो फिर से जॉब पे जाना है, मैं इतना मजबूत नहीं हूं कि मैं, चूंकि जॉब के ऊपर कोई गुनाह वाला मामला होता है तो मैं उस रिजाइन करके घर पे बैठ जाऊं, ये मैं नहीं कर सकता, तो कल जाकर के फिर मैंने उसी गुनाह के माहौल के अंदर काम करना है, फिर भी तौबा करे, रात को तौबा कर करके सोए। ठीक है, और दफ्तर में भी गुनाह कर भी है, कोई कोई ऐसा माहौल है, कोई ऐसी चीज है, जैसे औरतों के साथ बेपर्दा औरतों के साथ बात करनी पड़ती है, उस वक्त मुस्तकिल तौबा की हालत में रहे। ठीक है, तो तौबा तो ये चीज है, अल्लाह ताला से दुआ करता रहे कि अल्लाह मैं नहीं चाहता, आप मुझे इसमें से निकाल लीजिए, अल्लाह आप मुझे निकाल लीजिए, अल्लाह आप मुझे निकाल लीजिए। ठीक, ये हालत है तौबा। ठीक है जी, तो अल्लाह ताला हम सबको बात के समझ रहे कि तौफीक अता फरमाए, वा आखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।